एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी सुनने वालों का स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब पर गौर करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही बुनियादी पर शायद सबसे ज्यादा क्या कहेंगे गलत समझे जाने वाले विषयों में से एक के दिल में उतरती है।
हाँ, कौन सा विषय?
वो विषय है गणित, मैथमेटिक्स।
अच्छा, गणित। हाँ, ये तो है। नमस्कार, मैं हूँ मेजबान दो का नाम।
और मैं हूँ मेजबान एक का नाम। आज हम सर टिमोथी गोवेज की किताब मैथमेटिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि गणित असल में है क्या, ये क्यों मायने रखता है, और सबसे दिलचस्प बात, एक गणितज्ञ आखिर सोचता कैसे है।
हाँ, ये सवाल वाकई अहम है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का गणित से वास्ता स्कूल में पढ़ता है, और वो अनुभव अक्सर मिला जुला सा रहता है ना।
बिल्कुल, कई बार तो लगता है जैसे ये सिर्फ कुछ नियमों और मुश्किल सवालों का नाम है।
सही कहा, लेकिन ये किताब इसी छवि को चुनौती देती है।
अच्छा।
हाँ, ये बताती है कि गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दुनिया को देखने का, उसमें छिपे पैटर्न और संरचनाओं को समझने का एक नजरिया है।
एक नजरिया।
हाँ, और एक बहुत ही रचनात्मक और शक्तिशाली नजरिया।
तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि गणित के उस असली, उस रचनात्मक चेहरे को सामने लाया जाए।
बिल्कुल, वो चेहरा जिसे शायद हम स्कूल की किताबों में उतना देख नहीं पाते, और इस सफर में हमारे गाइड हैं सर टिमोथी गोर्स।
हाँ, इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये कोई आम गणित के टीचर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। सर टिमोथी गोवर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, राउस बॉल प्रोफेसर।
और सिर्फ यही नहीं, उन्हें 1998 में फील्ड्स मेडल से नवाजा गया था।
फील्ड्स मेडल, हाँ, जिसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
सही।
और ये उन्हें मिला फंक्शनल एनालिसिस और कॉम्बिनेटोरिक्स जैसे बेहद जटिल, मतलब आधुनिक गणित के जो क्षेत्र हैं उनमें उनके काम के लिए। तो ये वो इंसान हैं जो गणित की बिल्कुल ऊंचाइयों पर काम करते हैं।
लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये है कि इतने ऊंचे स्तर के शोधकर्ता होने के बावजूद उनमें गणित के गहरे विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने की गजब की क्षमता है। वो इसे आसान बनाते हैं, दिलचस्प बनाते हैं।
हाँ, ये बात तो है। वो एक जाने माने गणित के ब्लॉगर भी हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि गणित का डर कम हो।
हाँ,
और लोग उसकी खूबसूरती को समझ सकें। तो इस किताब में हमें गणित की गहराई और उसे समझाने की कला दोनों का मेल मिलता है।
अच्छा, तो चलिए अब किताब पर आते हैं। ये किताब करती क्या है?
हाँ, तो ये किताब एक तरह से पुल बनाती है।
पुल किसके बीच?
उस स्कूली गणित के बीच जो हमें नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट जैसा लगता है, और उस असली गणितीय दुनिया के बीच जहाँ खोज, रचनात्मकता, जिज्ञासा, ये सब सबसे आगे हैं।
अच्छा, तो ये फॉर्मूले नहीं सिखाती?
नहीं, इसका मकसद वो नहीं है। इसका मकसद है ये समझाना कि गणितज्ञ सोचते कैसे हैं, वो किसी समस्या को पकड़ते कैसे हैं, और गणितीय विचारों में इतनी ताकत आती कहाँ से। ये किताब गणितीय सोच पर जोर देती है।
गणितीय सोच, और इसका एक केंद्रीय तत्व है जिसे गोवाज एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, अमूर्त विधि।
हाँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे।
हाँ, लगता तो है,
पर इसका मतलब बहुत सरल और शक्तिशाली है।
क्या मतलब है इसका?
मतलब ये कि किसी समस्या या स्थिति से उसकी गैर जरूरी डिटेल्स हटा दो,
ठीक है,
और सिर्फ उसके मूल तार्किक ढांचे को देखो। जैसे मान लीजिए किसी चीज की ऊपरी परत हटाकर अंदर का ढांचा देखना। गोवाज दिखाते हैं कि गणितज्ञ अक्सर ये कमाल करते हैं, वो दो बिल्कुल अलग दिखने वाली चीजों में एक जैसी छिपी हुई संरचना पहचान लेते हैं।
ऐसा सच में होता है? कोई उदाहरण है किताब में इसका?
हाँ, एक बहुत ही शानदार उदाहरण है।
बताइए।
एक तरफ है टिक टैक टो का खेल, शून्य कांटा, जीरो क्रॉस।
हाँ हाँ, खेला है।
और दूसरी तरफ है एक 3x3 का जादुई वर्क, मैजिक स्क्वायर, जिसमें 1 से 9 तक के अंक ऐसे रखे जाते हैं कि हर लाइन, कॉलम, डायगनल सबका जोड़ 15 हो।
हाँ, याद है, पजल जैसा होता है।
ये दोनों तो बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं, एक खेल एक पहेली।
दिखने में बिल्कुल अलग, लेकिन गोवर्स दिखाते हैं कि गणितीय नजरिए से ये दोनों असल में एक ही संरचना के दो अलग अलग रूप हैं, दो मॉडल हैं।
क्या मतलब, कैसे? टिक टैक टो में जीतने की जो रणनीति है ना,
हाँ,
वो खोजना गणितीय रूप से मैजिक स्क्वायर में उन 3 नंबरों को चुनने जैसा ही है जिनका जोड़ 15 होता है।
अरे वाह, ये तो कमाल का नजरिया है,
है ना?
मतलब सतह के नीचे देखना कि चीजें असल में कैसे जुड़ी हुई हैं।
हाँ,
यही है एब्स्ट्रैक्ट मेथड।
बिल्कुल, और यही गणित की असली ताकत है, अलग अलग चीजों में समान पैटर्न और संरचना को पहचानना।
समझिए,
ये किताब इसी तरह के उदाहरणों से भरी है जो हमें दिखाते हैं कि गणित सिर्फ गणना नहीं है, बल्कि पैटर्न पहचानने और समझने का नाम है।
ये बात गणित की उस छवि को तोड़ती है जो कहती है कि गणित बहुत कठोर है, नियमों में बंधा हुआ, एकदम सूखा विषय है।
हाँ, और गोवर्स का एक और बड़ा तर्क यही है कि गणित असल में एक बेहद रचनात्मक और मानवीय गतिविधि है।
रचनात्मक गणित? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हमें तो लगता है गणित में सब कुछ पहले से तय है, 2+2 तो हमेशा 4 ही होगा ना।
हाँ, नियम है, तर्क है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गणितज्ञ सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते।
तो क्या करते हैं?
वो नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, नई परिभाषाएं चुनते हैं, समस्याओं को देखने के नए तरीके ईजाद करते हैं।
अच्छा?
हाँ, इसमें अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन और यहाँ तक कि सौंदर्य बोध एस्थेटिक सेंस भी शामिल होता है। गणितज्ञ अक्सर किसी प्रूफ या थ्योरी की खूबसूरती या एलिगेंस की बात करते हैं।
अच्छा, एलिगेंस गणित में? कोई उदाहरण है इसका? कैसे दिखती है गणित में रचनात्मकता?
आप संख्याओं के निकास को ही देख लीजिए।
हाँ?
हम गिनती की संख्याओं से शुरू करते हैं,
1, 2, 3।
हाँ, नेचुरल नंबर्स।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन फिर सवाल आता है, भाई 5 में से 7 कैसे घटाएं?
हाँ?
या 5 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए?
हाँ, मुश्किल है।
तो इन सवालों के जवाब के लिए हमें नेगेटिव संख्याओं की रचना करनी पड़ी, -1, -2। ये कोई आसमान से नहीं टपकी, ये इंसानी जरूरत और रचनात्मक सोच का नतीजा थी।
सही बात है। और फिर भिन्न आई फ्रैक्शंस,
फिर पाई जैसी संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स।
बिल्कुल।
हर कदम पर गणितज्ञों ने मौजूदा सिस्टम की सीमाओं को समझा।
हाँ।
और उसे तोड़ने के लिए नई अवधारणाएं बनाई, एक तरह से नए नियम बनाए। एक और मजेदार उदाहरण है मॉड्यूलर अरिथमेटिक का।
मॉड्यूलर अरिथमेटिक?
हाँ, जिसे घड़ी का गणित भी कह सकते हैं।
घड़ी का गणित मतलब?
जैसे घड़ी में 10 बजे के 4 घंटे बाद क्या बचता है?
2 बजते हैं।
हाँ, 2 बजते हैं। 10+4=2। ये सामान्य गणित के नियम 10+4=14 से अलग है ना?
हाँ, बिल्कुल अलग है।
लेकिन ये अपने आप में पूरी तरह तार्किक है और उपयोगी भी है, कंप्यूटर साइंस में, क्रिप्टोग्राफी में बहुत जगह काम आता है।
अच्छा।
ये दिखाता है कि गणित के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो हमारे द्वारा चुनी गई अमूर्त प्रणाली मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम पर निर्भर करते हैं।
गणितज्ञ ऐसी प्रणालियां बनाते हैं और फिर उनके गुणों को एक्सप्लोर करते हैं।
ये तो वाकई वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। मतलब गणित सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है,
नहीं,
बल्कि सही सवाल पूछना और उन सवालों के जवाब देने के लिए नए औजार या कॉन्सेप्ट बनाना भी है।
बिल्कुल सही कहा। और जब गणितज्ञ कोई दावा करते हैं तो उसे साबित करने के लिए उन्हें सबूत देना होता है।
हाँ।
लेकिन गणित में सबूत का मतलब सिर्फ कुछ उदाहरण देना नहीं होता। यहाँ आता है गणित का सबसे खास पहलू, प्रमाण, प्रूफ्स।
हाँ, प्रूफ शब्द तो सुना है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है गणित में?
गणित में प्रूफ का मतलब है एक ऐसा, आप कह सकती हैं, 100% एयरटाइट तार्किक तर्क देना।
एयरटाइट? हाँ, जिसमें शक की कोई गुंजाइश ना रहे, जरा सी भी नहीं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई बात सच है, बल्कि ये समझाता है कि वो सच क्यों है।
हाँ।
उसके पीछे का पूरा लॉजिकल ढांचा खोल कर रख देता है।
अच्छा।
हाँ।
तो क्या प्रूफ लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं?
हाँ, कई शैलियां हैं। एक दिलचस्प तरीका है विरोधाभास द्वारा प्रमाण, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन।
ये कैसा होता है?
इसमें आप मान लेते हैं कि जो बात आपको साबित करनी है वो असल में गलत है।
अच्छा, उल्टा मान लेते हैं।
हाँ, फिर आप दिखाते हैं कि इस गलत मान्यता से आप किसी एकदम बेतुके या असंभव नतीजे पर पहुंचते हैं।
हाँ।
मतलब कुछ ऐसा जो हो ही नहीं सकता। इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी शुरुआती मान्यता ही गलत थी, यानी असल कथन सच है।
अरे वाह, ये तो काफी चालाकी भरा तरीका लगता है। लेकिन क्या ये हमेशा आसान होता है समझना?
हमेशा नहीं, कुछ प्रूफ बहुत लंबे और जटिल हो सकते हैं।
जैसे?
जैसे 4-कलर प्रमेय का मामला है।
4-कलर प्रमेय?
हाँ, ये कहता है कि किसी भी नक्शे को रंगने के लिए सिर्फ 4 रंगों की जरूरत होती है, ताकि कोई भी 2 पड़ोसी क्षेत्रों का रंग एक जैसा ना हो।
अच्छा, सिर्फ 4 रंग?
हाँ, इसका प्रूफ इतना लंबा और पेचीदा था कि उसे कंप्यूटर की मदद से जांचना पड़ा।
कंप्यूटर से?
हाँ, और इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या ऐसा प्रूफ जिसे कोई इंसान पूरी तरह अपने दिमाग में न रख सके, क्या वो सच में समझ प्रदान करता है या सिर्फ यकीन दिलाता है?
ये तो गहरा सवाल है। यानी प्रूफ सिर्फ सच्चाई की गारंटी नहीं है?
नहीं, उससे ज्यादा है,
बल्कि समझ बढ़ाने का जरिया भी है।
बिल्कुल। और गणित की एक और खूबी है अमूर्तता को संभालना, एब्स्ट्रैक्शन को, यहां तक कि अनंत जैसी चीजों को भी।
अनंत, इन्फिनिटी?
हाँ, यहीं पर सीमा या लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है।
लिमिट? हाँ, ये कैलकुलस में सुना था। मुश्किल लगता था।
हाँ लगता है शुरू में, पर यह कैलकुलस की रीढ़ है। लिमिट की अवधारणा ने गणितज्ञों को अनंत प्रक्रियाओं मतलब इन्फिनिट प्रोसेसेस या असीम रूप से छोटी मात्राओं इन्फिनिटी सिमिली स्मॉल क्वांटिटीज के बारे में बिल्कुल सटीक और तार्किक रूप से सोचने का तरीका दिया।
अच्छा,
ये दिखाता है कि कैसे गणित अस्पष्ट लगने वाले विचारों को भी कठोर परिभाषाएं देकर अपनी पकड़ में ले लेता है।
और इसी अमूर्तता से गणितज्ञ ऐसी चीजों के बारे में भी सोच पाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से परे लगती हैं।
जैसे?
जैसे ऊंची विमाएं, हाई डायमेंशंस।
हाँ, हम 1D यानी रेखा, 2D यानी सतह, 3D यानी स्थान, इनसे तो वाकिफ हैं।
बिल्कुल।
लेकिन गणितज्ञ 4D, 5D या हजारों विमाओं वाले स्पेसेस के साथ काम करते हैं।
हजारों विमाएं? ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। इसका क्या काम?
अजीब लगता है, पर ये आज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आधुनिक भौतिकी इन सब में बहुत काम आता है।
सच में?
हाँ, और गोवर्स विमा की एक और दिलचस्प परिभाषा देते हैं जो स्केलिंग पर आधारित है।
स्केलिंग?
हाँ,
यानी साइज बदलना।
हाँ, यानी किसी चीज का साइज बदलने पर उसकी माप कैसे बदलती है। जैसे रेखा की लंबाई दुगनी करें तो माप 2^1 गुना बढ़ती है।
हाँ,
वर्ग का साइड दुगना करें तो क्षेत्रफल 2^2 गुना बढ़ता है।
ठीक है, 4 गुना।
और घन का साइड दुगना करें तो आयतन 2^3 गुना बढ़ता है।
8 गुना।
हाँ, तो ये जो घात है ना, 1, 2, 3, यही विमाएं हैं, डायमेंशंस।
अच्छा, तो इस परिभाषा से क्या होता है?
इससे फ्रैक्टल्स जैसे बड़े अजीबोगरीब आकार सामने आते हैं।
फ्रैक्टल्स?
हाँ, जिनकी विमाएं भिन्न हो सकती हैं, फ्रैक्शनल डायमेंशंस, जैसे 1.5 या 2.7।
डेढ़ विमा? ये कैसे हो सकता है?
है ना अजीब। ये फिर दिखाता है कि कैसे अमूर्त सोच हमें नई और अप्रत्याशित चीजों तक ले जा सकती है।
यानी गणित की दुनिया सिर्फ नंबरों और आकारों तक ही सीमित नहीं है, ये तार्किक संभावनाओं की खोज है।
बिल्कुल, जैसे ज्यामिति में हुआ। हम स्कूल में यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ते हैं।
हाँ,
जिसमें सीधी रेखाएं होती हैं, त्रिभुज, वृत्त वगैरह। बल्कि इससे पूरी तरह से नई लेकिन अपने आप में सुसंगत मतलब कंसिस्टेंट ज्यामितियां बनी।
नई ज्यामितियां?
हाँ, जैसे गोले की सतह की ज्यामिति या हाइपरबॉलिक ज्यामिति। ये दिखाता है कि गणित सिर्फ भौतिक दुनिया का वर्णन नहीं है, बल्कि ये कुछ शुरुआती मान्यताओं जिन्हें एक्सियोम्स कहते हैं, उनसे निकलने वाले तार्किक नतीजों का अध्ययन है। आप नियम बदलो और एक नई तार्किक दुनिया खड़ी हो जाती है।
वाह, ये गणित की रचनात्मक स्वतंत्रता है ना?
बिल्कुल, रचनात्मक स्वतंत्रता।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इस किताब से कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, क्या की टेकअवेज हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश है एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ताकत।
हाँ,
किसी भी समस्या या स्थिति के शोर को हटाकर उसके मूल तार्किक ढांचे को पहचानना, ये गणितीय सोच का सार है।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा ये कि गणित एक रचनात्मक और मानवीय प्रक्रिया है। ये नियमों का सिर्फ सूखा पालन नहीं है, बल्कि नए विचारों, परिभाषाओं और तरीकों को गढ़ने का काम है, जिसमें अंतर्ज्ञान और सुंदरता की भी जगह है।
सही।
तीसरा पॉइंट।
तीसरा, अमूर्तता डराती है पर यही शक्ति है। जो चीजें सबसे ज्यादा सैद्धांतिक या एब्स्ट्रैक्ट लगती है ना,
हाँ,
अक्सर वही सबसे ज्यादा व्यवहारिक और दूरगामी अनुप्रयोगों वाली साबित होती हैं। अमूर्तता असल में यूनिवर्सैलिटी लाती है।
चौथा क्या है?
चौथा, प्रूफ सिर्फ सच बताना नहीं, समझाना है। गणित में प्रमाण का लक्ष्य सिर्फ किसी बात को सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये उजागर करना है कि वो सही क्यों है। ये समझ पैदा करता है, अंडरस्टैंडिंग।
और आखिर में
गणित भले ही अलग अलग शाखाओं में बटा दिखे, बीजगणित, ज्यामिति, विश्लेषण वगैरह।
हाँ, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर इसमें गहरी एकता है। सोचने के तरीके, तर्क के सिद्धांत, संरचनाओं के प्रकार, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं।
ये तो हो गए मुख्य संदेश। किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एकदम सोचने पर मजबूर करती हैं, गणित को देखने का नजरिया बदल सकती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे ये कहना कि गणित संख्याओं या गणनाओं के बारे में नहीं बल्कि समझने के बारे में है।
हाँ, ये शायद पूरी किताब का निचोड़ है।
बिल्कुल, या ये विचार कि एक गणितीय वस्तु वो है जो वो करती है।
मतलब
किसी चीज की पहचान उसके गुणों और व्यवहार से होती है, इससे नहीं कि वो असल में क्या है। जैसे बिंदु या पॉइंट असल में क्या है, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यामिति में क्या भूमिका निभाता है, उसके गुण क्या है। ये सोच गणित को भौतिक दुनिया की सीमाओं से आजाद करती है।
ये दिलचस्प है। और
ये भी बहुत शक्तिशाली है। गणितज्ञ का एक प्रमुख काम यह दिखाना है कि एक समस्या दूसरी अलग दिखने वाली समस्या के समान है।
हाँ, जैसे वो टिक टैक टो और मैजिक स्क्वायर वाला उदाहरण था।
बिल्कुल, ये समानताएं खोजना ही असली काम है, एब्स्ट्रैक्शन यही तो है।
एक और विचार है जो मुझे बड़ा मजेदार लगा, वो वॉन न्यूमैन वाला।
हाँ, गणित में आप चीजों को कभी समझते नहीं हैं, आप बस उनके अभ्यस्त हो जाते हैं।
क्या मतलब है इसका? क्या ये मजाक है?
मजाक भी है, पर शायद इसमें सच्चाई भी है। कई बार हम बेहद अमूर्त चीजों के साथ काम करना सीख जाते हैं, उनके साथ इतने सहज हो जाते हैं कि लगता है हम समझ गए।
हाँ,
जबकि असल में हम उनके व्यवहार के, उनके नियमों के अभ्यस्त हो गए हैं, उन्हें इस्तेमाल करना सीख गए हैं।
अब सवाल ये उठता है कि इस सारी गणितीय सोच का, इस एब्स्ट्रैक्शन का, प्रूफ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है? क्या ये सिर्फ गणितज्ञों के लिए है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा है हमारी समस्या समाधान की क्षमता का बेहतर होना।
कैसे?
किसी भी उलझी हुई स्थिति, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर की कोई परेशानी, उसके मूल मुद्दे को पहचानना, गैर जरूरी बातों को अलग करना, ये कौशल हमें गणितीय सोच से मिलता है। प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करना सीखते हैं हम,
और
ये हमारी तार्किक और आलोचनात्मक सोच को भी तेज करता है। हम किसी की दलील को बेहतर ढंग से परख पाते हैं, उसमें छुपी कमजोरियों या मान्यताओं को देख पाते हैं।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। कोई खबर पढ़ते हुए या कोई बहस सुनते हुए ये पता लगा पाते हैं कि बात में कितना दम है, तर्क कितना मजबूत है।
बिल्कुल, साथ ही ये रणनीतिक योजना में मदद करता है।
वो कैसे?
अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचना, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, इस तरह की व्हाट इफ वाली सोच।
हाँ, कंडीशनल थिंकिंग।
हाँ, जो गणित में आम है, वो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो या कोई और योजना।
और आज की डेटा से भरी दुनिया में तो ये और भी जरूरी होगा।
बहुत जरूरी है, वहां तो ये और भी ज्यादा अहम है। गणितीय मॉडल कैसे काम करते हैं, आंकड़ों का क्या मतलब निकाला जा सकता है और क्या नहीं, उनकी सीमाएं क्या हैं, ये सब समझने के लिए गणितीय सोच बहुत जरूरी है।
सही बात है, वरना हम डेटा के जाल में खो सकते हैं या गुमराह हो सकते हैं।
बिल्कुल, और शायद सबसे अहम, ये रचनात्मकता को भी जगा सकता है।
रचनात्मकता गणित से?
हाँ, जब हम देखते हैं कि गणितज्ञ कैसे स्थापित नियमों पर सवाल उठाते हैं और पूरी नई दुनियाएं बना देते हैं, जैसे वो गैर यूक्लिडियन ज्यामिति,
हाँ,
तो हमें भी अपने क्षेत्र में बॉक्स के बाहर सोचने की प्रेरणा मिलती है, नियमों को चुनौती देने की हिम्मत मिलती है।
तो कुल मिलाकर ये किताब हमें दिखाती है कि गणित सिर्फ एक विषय नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये सोचने का एक शक्तिशाली तरीका है। पैटर्न खोजना, परिभाषाओं को सटीक बनाना, तार्किक रूप से बहस करना, ये ऐसे मानसिक औजार हैं जो हर किसी के काम आ सकते हैं।
बिल्कुल, मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात शायद यही थी कि कैसे अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शन, जो हमें अक्सर डरावनी या अव्यवहारिक लगती है,
हाँ बिल्कुल,
वही गणित की असली ताकत और उसके व्यापक असर का राज है। जो चीज जितनी अमूर्त, शायद उतनी ही शक्तिशाली।
और मेरे लिए ये एहसास कि गणितीय समझ किसी के लिए भी मुमकिन है, इसके लिए कोई खास गणित वाला दिमाग नहीं चाहिए होता।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
बस जिज्ञासा होनी चाहिए, थोड़ी मेहनत और सोचने की इच्छा। ये एक रचनात्मक, इंसानी और यहाँ तक कि खूबसूरत बौद्धिक यात्रा हो सकती है।
सही कहा। चलते चलते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं।
हाँ,
वो इस पर सोच सकते हैं, गणित की ये संरचनाएं, ये पैटर्न, ये नियम, क्या ये ब्रह्मांड में पहले से मौजूद हैं, जिन्हें हम सिर्फ खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, जैसे कोई खगोल शास्त्री नया तारा खोजता है,
या फिर
ये पूरी तरह से इंसानी दिमाग की ईजाद है, इन्वेंशन है, हमारी रचनात्मकता का नतीजा, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग बनाता है। हाँ, खोज या ईजाद, डिस्कवरी या इन्वेंशन, ये गणित का शायद सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल है।
और इसका जवाब शायद इस पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान और वास्तविकता को कैसे देखते हैं, है ना?
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।